ओम शांति। शीलू बहन जी का क्लास सुने उससे पहले हम सभी उनका एक हाथ की ताली से दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और शॉर्ट में हम उनका परिचय भी सुनेंगे। वैसे तो सभी चेहरे से उनको जानते हैं, सभी ने देखा हुआ है कई बार है। हाँ हाँ, आपको भट्टी कराने भी आए थे ना, तो पहचानते। पर फिर भी एक बार उनका डिटेल परिचय हम सभी सुनेंगे। आप वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर के हैं, निर्देशिका राजयोग शिविर माउंट आबू, टीवी चैनलों में प्रवक्ता, महासम्मेलन प्रवक्ता तथा अनुवादक, संयोजिका शिक्षा प्रभाग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन माउंट आबू, 5 महाद्वीपों में और 60 से भी अधिक देशों में आपने भ्रमण किया है। ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी का जन्म 1948 में मुंबई में हुआ। आपको बचपन से ही आध्यात्मिक अनुभवों के प्रति गहरी रुचि रही, इसलिए 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में आई तथा अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजयोग का भी अभ्यास करती रही, जिससे आपने मानसिक एकाग्रता एवं कुशाग्र बुद्धि तथा शक्ति के विकास का अनुभव किया। बंबई विश्वविद्यालय से 1969 में विज्ञान में स्नातक होने के पश्चात 21 वर्ष की आयु में आप मानवता की सेवा अर्थ इस संस्था में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गई। सन 70 से 74 तक आपने बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद तथा मुंबई में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। सन 74 से 76 तक कुछ अफ्रीकी देशों में तथा मॉरिशियस में आपने ईश्वरीय सेवा कर अनेक राजयोग सेवा केंद्रों की स्थापना की। 76 से आप मुख्यालय माउंट आबू में स्थायी रूप से रहकर राजयोग शिविरों का सकुशल संचालन कर रही हैं, जिसके द्वारा अब तक लाखों वैज्ञानिकों, व्यापारियों, न्यायविदों, राजनीतिज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य अनेक व्यवसायों के व्यक्ति लाभ ले चुके हैं तथा अब भी राजयोग सीखने के लिए हजारों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष माउंट आबू आते रहते हैं। आपने 5 ही महाद्वीपों में 60 से भी अधिक देशों में यात्राएं की हैं, जहां प्रवचनों के माध्यम से सकारात्मक सोचने की कला, तनाव मुक्त जीवन तथा राजयोग द्वारा जीवन मूल्यों का विकास आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। आपकी स्पष्ट तार्किक तथा आत्मिक स्नेह एवं आध्यात्म रसपूर्ण वाणी की बढ़ती हुई चाहना को लेकर राजयोग प्रवचन माला, राजयोग कमेंट्री तथा कई आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचनों की ऑडियो तथा वीडियो कैसेट तथा सीडी भी उपलब्ध है। आपने रेडियो, टीवी तथा समाचार पत्रों द्वारा भी योगी जीवन की सुवास को सर्वत्र फैलाया है। आपके प्रवचन जी टीवी, सोनी टीवी, आस्था तथा संस्कार चैनलों पर भी प्रसारित होते रहे हैं। वर्तमान समय आपके प्रवचन जागरण चैनल पर नियमित रूप से आते रहते हैं। हिंदी अंग्रेजी तथा सिंधी भाषा में आप धारा प्रवाह बोलती हैं तथा इन भाषाओं में कुशल वक्ता के साथ सफल अनुवादक भी हैं। आबू पर्वत तथा अन्य स्थानों पर आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलनों महासम्मेलनों में आप कुशल प्रवक्ता रही हैं। आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर अपने अनुभव रस से अधिकार एवं प्रभावी रूप से बोल सकती हैं। तो हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी कुशल वक्ता शीलू बहन जी का आज बट्टी में विशेष हम सभी को लाभ मिल रहा है। तो फिर से दिल से स्वागत करते हैं। अब आगे ज्यादा ना कहते हुए उनका अनुभव युक्त क्लास हम सभी सुनेंगे। शीलू बहन जी।
ओम शांति। पिछले तीन चार दिन से आप बहुत अच्छे रूहानी विद्यार्थी बन करके खूब बाबा की शिक्षाएं विभिन्न भाई बहनों के द्वारा सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं और उसका स्वरूप बन रहे हैं, है ना? कितने खजाने जमा किए, बहुत खजाने जमा किए, कापियां भर ली। तो आज मुझे कहा गया है एक विषय पर कुछ बातें आपको सुनाई, निमित्त आत्मा तथा ईश्वरीय परिवार से रूहानी स्नेह। तो ये स्नेह शब्द कितना प्यारा है। स्नेह कहो, प्यार कहो, प्रेम कहो, बड़ा प्यारा शब्द है। भक्ति मार्ग में इसका बहुत वर्णन है, कबीर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, पोथी पढ़त पढ़त पंडित बया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो वही पंडित होए। चाहे कितने भी पोथी पढ़ ले, बड़े बड़े आज बाबा ने कहा ना, टाइटल लेते हैं, पढ़ करके ही टाइटल लेते हैं, लेकिन प्रेम का पाठ पढ़ने लिए कोई बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्नेह स्वरूप, प्रेम स्वरूप, प्यार स्वरूप है। प्यार सिखाया नहीं जाता है, आत्मा के अंदर ये स्वाभाविक रूप से है, इसीलिए प्यार मांगा भी नहीं जाता है परंतु दिया जाता है। देने से ही मिलता है, मांगने से नहीं मिलता। कोई कहे मुझे कोई प्यार करो, मुझे कोई प्यार करो, ऐसे करेगा कोई प्यार? लेकिन हम प्यार सबको दे, स्नेह दे तो अपने आप मिलेगा। कर्म फिलॉसॉफी में यही बताते हैं, आप जो चाहते हो अपने लिए वो दूसरों को दो, आपको अपने आप मिलेगा, मांगो मत। सुख दो तो सुख मिले, प्यार दो तो प्यार मिले, मांगो मत। परंतु दुनिया में हम देखते हैं जैसे शांति के भिखारी हैं, वैसे प्यार के भी भिखारी हैं, बहुत भिखारी हैं। देना आता नहीं और कईयों को तो लेना भी नहीं आता, अगर और कोई दे तो लेना भी नहीं आता है। कोई अगर किसको स्नेह दे तो कहेगा पता नहीं क्या इसके मन में, कुछ दाल में काला लगता है तो लेना भी नहीं आता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, कोई कैसा भी हो, कितना भी अपकारी क्यों न हो, परंतु मुझे उपकार करना है, स्नेह देना है। चलो और कुछ नहीं दे सको, प्रेम देने में कुछ भी आपका खर्चा नहीं है, स्नेह देने में कोई भी खर्चा नहीं है। वो दिखाते ना, कहानी सुनाते, गुड़ का व्यापारी था, तो कोई भिखारी उसके पास गया और कहा कि मुझे थोड़ा सा गुड़ दो, भूख लगी है, गुड़ ये खाऊं, कुछ थोड़ा सा दो। पैसा तो था नहीं जो खरीद सके, तो उस व्यापारी ने उसको वो गाली दी और कहा चले जाओ यहाँ से। तो जाते जाते क्या कहा, अच्छा सा गुड़ नहीं दे सकते हो तो गुड़ जैसा मीठा तो बोलो, गुड़ कितना मीठा है, कम से कम उस जैसा तो आप मिठास तो दो, भले गुड़ मत दो, प्यार से तो बोलो। तो दुनिया में तो हम देखते हैं कि वो प्यार भी नहीं है, खाली है, सब खोखले हैं। और अगर प्यार है भी तो भी उसमें कितना स्वार्थ भरा हुआ है कि मैं प्यार उसको ही दूं जिससे कुछ मिले। और बाबा कहते हैं देखो मैं कितना निष्कामी हूं, मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए पर मैं सब कुछ देता हूं। तो तुम बच्चे भी मास्टर प्रेम के सागर बनो। कोई कैसी भी आत्मा हो, कितना भी आपसे बुरा व्यवहार करने वाली हो, लेकिन आप उसको स्नेह देते जाओ, क्योंकि हो सकता है किसी जन्म का कर्म का हिसाब किताब हो, इसीलिए वो इतना बुरा व्यवहार है उसका, या जो भी उनका अपना तरीका है आपके साथ संबंध संपर्क का, कोई हिसाब किताब है। इसलिए आप अपना हिसाब किताब मत बढ़ाओ, वो जैसा भी कर्म करता है वो उसका कर्म बनेगा, पर आप अपना कर्मों का हिसाब किताब मत बनाओ, नफरत करके, वैर करके, दुश्मनी करके, या बुरा भला कह करके, या दुख दे करके। ठीक है, हर एक को अपने कर्म का फल तो मिलता ही है, तो मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है, उसने क्या किया वो जाने। इसीलिए बाबा कहते हैं सबको स्नेह देते जाओ, सबको स्नेह दो, कोई कैसा भी हो। तो दुनिया के लिए भी बाबा कहते हैं सबको स्नेह दो, तो ईश्वरीय परिवार के लिए तो ये और भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वरीय परिवार तो हमारा संगम युग पर ही केवल नहीं मिलता, पर हम सभी आत्माएं सारा कल्प किसी न किसी नाम रूप में साथ में ही है। इस जन्म में तो इस नाम रूप में साथ में है, ब्राह्मण रूप में है, लेकिन फिर ट्रांसफर होंगे तो देवता रूप में भी हम ही साथ में होंगे ना, या कोई वो दूसरे होंगे, हम ही होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि अभी हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वही फिर श्री नारायण बनता है, तो उनकी ही वंशावली है, हम विष्णु वंशी है ना, सब सतयुग में अभी ब्रह्मा वंशी है, शिव वंशी तो सदा है ही है, पर अभी ब्रह्मा वंशी, भविष्य में विष्णु वंशी। तो विष्णु की ही रचना है, या कहेंगे उनकी पालना हो रही है सबको सतयुग में, तो यही परिवार फिर वहां पर भिन्न भिन्न नाम रूप में होंगे, साथ साथ ही होंगे। तो जबकि ये परिवार ही साथ चलना है, तो कितना स्नेह से एक दो के साथ व्यवहार करना होगा। हालांकि सतयुगी संबंध अभी हमको एक दो से नहीं बनाने हैं, अभी कहेंगे कि अच्छा तो मेरी पत्नी बनना सतयुग में, तो मेरा बच्चा बनना सतयुग में, तो मेरा पति बनना, तो मेरी माँ बनना, यहाँ संबंध बना सकते सतयुग के संबंध, यहाँ भी संबंध नहीं बना सकते हैं। कोई कहे कि अच्छा इस संगम पर तो मेरी माँ की तरह हो, बाबा कहते कोई माँ की तरह नहीं, माँ पिता एक ही है। हाँ, यहाँ पर भी हम संबंध नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर क्या है, सबका संबंध आपस में भाई भाई बस। बाबा कहते भाई बहन भी नहीं कहो, क्योंकि भाई बहन में भी दृष्टि बुरी जा सकती है, जाती है। हमारे पास कई आते हैं ना, तो बहुत अपने घर में उनका जवान बेटा बेटी होता है, मान लो जवान है बेटे बेटी, और माँ बाप तो यहाँ आ गए, तो थोड़े दिन के लिए पर उनको बहुत चिंता रहती है, मेरा जवान बेटा बेटी घर में है, मुझे जल्दी जाना है। हाँ, भले भाई बहन है तो भी माया किसको किस रूप से अटैक करे पता नहीं चलता है। भले बाप बेटी भी है, बाप बेटी का भी संबंध बड़ा पवित्र होता है, पर उसमें भी माया आ सकती है। वो दिखाते ना कि एक बार, ये सच्ची घटना है, पता नहीं कहाँ की, कि एक पिता ने अपने बेटी से दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया बेटी से, तो बेटी ने उसका केस किया। आजकल तो लड़कियां तो होशियार हो गई हैं, केस कर सकती है। तो जब पिता को बुलाया गया तो उसने कहा, तो मेरा ही पैदा किया हुआ फूल है, अगर हमने खुशबू ली तो क्या हुआ। देखो कलयुगी दुनिया कहाँ तक पहुंच गई है, क्योंकि हमने ही तो पैदा किया है, तो मेरा ही पैदा किया हुआ फूल है, तो मैं खुशबू ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। देखो मना कितनी हद तक दृष्टि वृत्ति या भावनाएं कितनी गिर चुकी है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बहन भाई की दृष्टि भी मत रखो, लेकिन भाई भाई की, पर उस भाई भाई की दृष्टि में आत्मिक स्नेह हो, रूहानी प्यार हो। जिस्मानी प्यार की तो यहाँ बात ही नहीं है। तो ये ईश्वरीय परिवार है, और इस ईश्वरीय परिवार में एक दो के प्रति वो आत्मिक स्नेह चाहिए। परंतु कैसे माया कभी भी वार कर सकती है, क्योंकि विकार जहाँ कहा जाता है, तो वो तो अगर शरीर से प्यार है तो या तो मोह हो जाएगा या तो काम विकार हो जाएगा, और दोनों ही बाबा कहते ये विकृति है। बाकी स्नेह प्रेम प्यार ये तो दैवी गुण है। तो कैसे ये दैवी गुण हमारा बना रहे और हर एक के प्रति ये स्नेह हो, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि अंतर में उनके प्रति विश्वास हो। बिना विश्वास के भी स्नेह नहीं होता है। आप किसे स्नेह तब करेंगे जब उसमें विश्वास होगा कि ये अच्छी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो स्वयं में निश्चय हो, खुद से भी हमारा प्यार होगा तो फिर दूसरों से भी प्यार कर सकेंगे। बाबा से प्यार होगा तो परिवार से भी कर सकेंगे। तो पहले खुद से प्यार, परिवार बाबा से प्यार, फिर परिवार से प्यार। और उसके लिए पहले खुद में निश्चय हो, क्योंकि जब हम अपने में निश्चय रखते हैं, अपने से प्यार करना जानते हैं, तो सबसे प्यार कर सकते हैं। अगर हम अपने प्रति नफरत रखते हैं, हाँ, कई लोग करते हैं, अपने प्रति नफरत है, बताते हैं ना कि चार प्रकार की वृत्तियां हैं इंसान की। एक वृत्ति है कि मैं भी बुरी, ये भी बुरा, सब बुरे, सारी दुनिया ही बुरी है, मैं भी बुरी हूँ। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, सारा दिन सबकी ग्लानी करते रहते हैं, उनके पास जाओ और ग्लानी शुरू, फलाने फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, और खुद की भी ग्लानी करेंगे, मैं भी बुरी, मैं भी ऐसा, मैं भी ऐसा, हाँ मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मुझे अंदर तो कोई विशेषता नहीं है, वो भी ऐसा ही है। तो सबकी बुराई, खुद की भी। तो मैं भी बुरा, सब बुरे। दूसरे हैं जो कहेंगे मैं बहुत अच्छा, पर दूसरे बुरे, अपनी बढ़ाई करेंगे, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं देखो ये करता हूँ ये करता हूँ, अपना इतना अभिमान दिखाएंगे। अपने से प्यार है पर वो अभिमान का रूप ले लेता है, और दूसरे की बुराई। तीसरे जो है जो अपनी ग्लानी करेंगे, दूसरे की बढ़ाई करेंगे, मैं तो कोई काम का नहीं पर वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, पर मैं अच्छा नहीं है। तो अपनी बुराई, दूसरों की बढ़ाई, और चौथे कौन है, मैं भी अच्छा दूसरे भी अच्छे। ये नहीं कि केवल दूसरे अच्छे मैं अच्छा नहीं, नहीं मैं भी अच्छा, क्योंकि सब अच्छे तो मैं थोड़ी बुरा हूं। हम अपने लिए अच्छा समझेंगे तो सबको अच्छा देख सकेंगे, अगर अपने कोई अच्छा नहीं समझेंगे तो कोई ना कोई नुक्स सब में से निकालेंगे। इसलिए मैं भी अच्छा और सब अच्छे, परंतु वो सब अच्छे सबसे स्नेह ये तब होगा जब इतना हर एक में विश्वास होगा। विश्वास की आज दुनिया में बहुत कमी है। कई कहते पर कैसे विश्वास रखे, धोखा दे तो एकदम से थोड़ी विश्वास रखेंगे, क्योंकि हम बहुत धोखा खा चुके हैं। कई लोग कहते हैं बहुत धोखा खा चुके हैं, इसलिए वो कहावत है दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। एक बार कुछ सफेद चीज हाथ में आ गई, वो दूध था, बहुत गरम गरम था, उसको लगा छाछ है, तो जैसे पिया तो जीभ जल गई। अरे बाप रे, ये तो इतनी इतना गरम, मुझे लगा छाछ है, छाछ तो ठंडी होती है क्योंकि सफेद तो था ही ना। तो इसलिए जब भी कोई सफेद चीज आएगी यही गरम होगा, गरम होगा, भले छाछ भी आ जाए। तो दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पिएगा कि गरम ना हो। तो एक बार किसी ने धोखा खाया तो समझता है कि सारे धोखा देते हैं, तो भले वो अच्छा भी होगा तो भी उसके अंदर में विश्वास नहीं होगा। परंतु विश्वास एक बहुत ऊंची चीज है, किसमें विश्वास रखना ये बहुत ऊंचा गुण है, क्योंकि अच्छे को भी अगर में भी विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर बुरे में तो रखेंगे नहीं, पर अच्छे में भी नहीं रखेंगे तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे। मेरा किसी में विश्वास नहीं, किसी में विश्वास नहीं, कोई ऐसे कहता रहे मान लो, मेरा किसी में विश्वास नहीं तो कोई उसके नजदीक भी नहीं जाएगा, किसी को अपने साथ भी नहीं रखेगा, अकेला पड़ जाएगा। तो अकेला पड़ा हुआ व्यक्ति वो तो पागल हो जाएगा। पागल लोग क्या करते हैं, अकेले ही अकेले होते ना, इसलिए पागल हो गए। वे किससे बात करे, तो दीवारों से बात करते रहते अकेले हो गए। तो बाबा ने तो हमें कहा कि मेरे से बातें करो, भगवान से बातें करो, पर भगवान से बातें करना आता नहीं तो दीवारों से बातें करते रहेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, ये देखो किससे बात कर रहा है, कोई है तो नहीं सामने। तो इसीलिए अकेला क्यों हो जाता है, क्योंकि किसी प्रति विश्वास ही नहीं है, और विश्वास नहीं है तो स्नेह भी नहीं है। अगर स्नेह है तो या तो वो विकारी स्नेह हो जाता है, उसमें भी स्वार्थ हो जाता है, या तो अगर स्नेह इसीलिए है क्योंकि डर है, स्वार्थ और डर ये दो बातें हैं, तो मन तो कमजोर ही हो जाता है, फिर देने की भावना भी खत्म हो जाती है, क्योंकि लेना है, स्वार्थ है, डर है। तो वो व्यक्ति कभी भी जीवन में संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई कैसा भी है आप उसको स्नेह दो, आप रिटर्न की इच्छा मत रखो कि ये भी मुझे स्नेह दे, कोई कैसा भी है। इसमें भी दो बातें हैं, एक है कि क्यों इनको स्नेह दो, क्योंकि हर आत्मा अपने असली रूप में प्रेम स्वरूप है, लेकिन इस समय वो नहीं समझ रहा है कि वो स्नेह स्वरूप प्रेम स्वरूप है, इसीलिए मुझे उसको स्नेह देना है। और दूसरा, ये भगवान का बच्चा है, तो भगवान का बच्चा कितना ऊंचा होगा, भले ये समझता नहीं कि ये भगवान का बच्चा है, पर हम तो समझते हैं ना। और तीसरी बात है कि मुझे अच्छाई देना है, चाहे कोई कैसा भी हो, तो स्नेह ही देंगे। परंतु ये भी नहीं कि अच्छा हूं ऐसे ही कहूं और अंदर में सोचने नहीं, डरता रहूं, दू न दू दू न दू, उसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। स्नेह देना मना मन वचन कर्म से अच्छी बातें कहना, चलो कोई चीज मांग रहा है ठीक है भले दो, देने से हमारा कुछ भी कम नहीं होता है। या चलो कोई कितना भी बुरा है, हिसाब किताब चुकतू हो गया और आगे हिसाब किताब नहीं बनाना है। तो आपसी स्नेह बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा कल्प हम आप एक दो के साथ रहेंगे, बाकी तो देश है दे के सब संबंधों को भूलो, बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार से तो स्नेह कभी न भूलो। और वो भी तब होगा जब पहले बाबा से सच्चा प्यार होगा। हम एक दो को स्नेह देते रहे और बाबा से स्नेह नहीं है तो ये स्नेह भी कायम नहीं रह सकेगा। बाबा से स्नेह है तो सबसे स्नेह होगा, एक एक को स्नेह देने की जरूरत नहीं है। स्नेह बाबा से रखो तो एक एक को अपने आप मिलेगा, नेचुरल मिलेगा, हमको विशेष देने की भी जरूरत नहीं। जैसे पेड़ को पानी देना है तो क्या करते हैं, पेड़ को पानी देना है तो एक एक पत्ते को थोड़ी देते हैं, क्या करते हैं, बस बीज को दो, जड़ों को दो, जड़ों को पानी दिया वो अपने आप पेड़ तक पहुंचेगा, पत्तों को मिलेगा। एक एक पत्ते को मेहनत करके देने की जरूरत नहीं है। तो बाबा से सच्ची प्रीत है तो बाबा से सच्ची प्रीत लेकर बाबा से लेकर फिर दे रहे हैं, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से दे रही हूं, बाबा से जो प्रीत मिली है वो बांट रही हूं। तो इसलिए सबसे प्रीत हो जाती है। और जो निमित आत्मा है, आपकी टीचर है, वो निमित है, उनके लिए तो स्नेह और रिस्पेक्ट दोनों है। जैसे बड़ों के लिए कहते हैं ना, भाई बड़ों को रिस्पेक्ट दो और छोटों को प्यार दो, तो छोटे जो हैं वो प्यार के पात्र हैं। छोटा बच्चा चाहे कितना भी कैसा भी है तो भी प्यारा है, उनको तो प्यार ही देना है। और बड़े चाहे कैसे भी हैं, उनको रिस्पेक्ट ही देनी है, उनको सम्मान ही देना है, बड़े है ना। हालांकि कलयुग की दुनिया में तो उल्टा हो गया, पता है, जो छोटे हैं वो कहते हैं हमको रिस्पेक्ट दो, ऐसे कैसे बात करते, छोटा भी कहेगा बड़ों को कि मेरे साथ ठीक ठीक बातचीत करो, और जो बड़े हैं वो कहेंगे बेटा कभी प्यार कभी आना, मिलने आना, थोड़ी प्यार की अच्छी अच्छी बातें करना। तो बड़े जो वो प्यार मांग रहे हैं और छोटे रिस्पेक्ट मांगते हैं, सम्मान मांगते हैं। किसी बच्चे को आप कोई गलती कर रहा है कुछ कर रहा है और सबके सामने उसको कह दिया बेटा ये ठीक नहीं है ऐसे मत करो, तो कितना गुस्सा आ जाता है कि सबके सामने मुझे क्यों कहा। सबके सामने कहना माना उसका डिसरिगार्ड हो गया ना, अगर कुछ भी कहना था अकेले में कहते तो उनके सामने क्यों कहा, तो वो क्या सोचेगा मेरे लिए। तो छोटे रिस्पेक्ट मांग रहे, और बड़े जो है वो कहेगा बेटा मिलने आना ना, कभी कभी तो मिलने आओ, क्योंकि बूढ़ा घर में रख दिया है अपने माँ बाप को तो बेचारे कहेंगे ना बेटा कभी तो मिलने के लिए आ जाओ, तो वो प्यार मांगते हैं। पर बाबा कहते मांगे या ना मांगे हमको देना है, बस मांगे तभी देना, ये तो हम मनुष्य बन गए। जैसे कहते हैं ना, एक होते हैं कि अपने आप जो देता है, जो अपने आप देता है वो देवता, जो मांगने जिससे मांगो और वो देता है वो मनुष्य, और मांगो तो भी नहीं देता है तो बाबा कहेंगे असुर। तो इसीलिए वो कोई मांगे और हम देवे नहीं, हमको सबको देना है इसने, कोई देवे या नहीं देवे, पर उसके लिए क्या जरूरी है, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि हो, सबके प्रति, चाहे कोई भी हो, कितना भी बुरा हो, कोई भी वास्तव में बुरा है ही नहीं सचमुच पूछो तो, अगर देखा जाए एक्सट्रीम एंड तक भी चले जाओ, कोई आतंकवादी है, कोई हत्यारा है, एक्सट्रीम है ये, पर किसी कोई मान लो हत्या करके आया, हत्या इतना बड़ा पाप करके आया, कितना बड़ा मानो घात करके आया, पर घर में जब आएगा तो अपने बच्चे को प्यार करेगा या मारेगा, हैं? तो इतना बड़ा काम करके आया, हत्या करके आया, और घर में आया तो बच्चे को प्यार करेगा, तो वास्तव में वो कौन है? प्रेम स्वरूप तो है ना, परंतु कई किसी ने हत्या की, किस परिस्थिति में आकर के की होगी वो भी कि कौन जाने, बहुत एक्सट्रीम एंड है ये, क्योंकि सचमुच वो कोई बुरा नहीं है, तो कोई भी बुरा नहीं है, चाहे कितना भी बुरा उसका व्यवहार हो, पर असल रूप में वो बुरा नहीं है, क्योंकि हर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में गुण स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, लेकिन हो सकता है वो जानता नहीं है, इसीलिए हम तो जानते हैं ना कि वो है, हम ये भी जानते हैं कि हम भी हैं। कोई व्यक्ति गाली देता है, गुस्सा करता है, बहुत डांटता है, लड़ता है, सब कुछ करता है मान लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा है, इसका मतलब क्या है, वो आत्मा अशांत है, अगर सचमुच उसके अंदर शांति होती ना तो ऐसा नहीं करता, पर वो अशांत है, तो अपनी अशांति कैसे निकाले, तो गुस्सा करके, लड़ के, तंग करके, परेशान करके, अंदर में अशांत है, और सचमुच उसके अंदर शांति होती तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता, तो अशांत है इसीलिए ऐसे कर रहा है, तो उस आत्मा को हमें शांति देनी है या हमको उनसे लड़ना है, तो लड़के तो शांति नहीं दे सकेंगे ना, कैसे दे सकेंगे शांति, कैसे दे सकेंगे उनको शांति, शांति के उनको वाइब्रेशंस देने से, और उसके लिए पहले अपने मन में शांति बनाए रखने से। पर क्यों हम भी उत्तेजित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी अभिमान है, वो अभिमान को ठोकर लगती है, इसीलिए हम भी गुस्से में आ जाते हैं, तो अभिमान है इसीलिए अपमान लगता है, बाबा कहते हैं, नहीं तो अपमान क्यों लगेगा, ठीक है ये उसका विचार है, पर मैं तो जानती हूं ना मैं कौन हूं, मैं जानती हूं इसीलिए मुझे उसका बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे अंदर में बाबा ने जो हमें स्वमान दिया हम उस नजर से देखते हैं, बाबा हमको कितनी ऊंची नजर से देखता है, जब अव्यक्त मुरली बाबा की सुनते हैं या साकार मुरलियां भी सुनते हैं, तो अव्यक्त मुरलियों में देखो पहला वाक्य जो आता है कि बाबा हमको किस नजर से देख रहे हैं, आज शुरू हो जाएगा, आज आज बाप दादा, फिर सब टाइटल्स आ जाएंगे बाप बच्चों के, कौन से कौन से कौन से कौन से बच्चों को देख रहे हैं, तो सारे टाइटल्स, होली हंसों को, पूज्य पूर्वजों को, कई टाइटल्स हैं, हर मुरली का अलग अलग बाबा का टाइटल है, टाइटल बच्चों को देते, तो बाबा हमको किस नजर से देख रहे हैं, कितनी ऊंची नजर से देख रहे हैं, तो जब बाबा हमको उस ऊंची नजर से देख रहे हैं, पहले हम अपने को उस नजर से देख रहे हैं, फिर हम दूसरों को उस नजर से देख रहे हैं जैसे बाबा देख रहे हैं, या खुद को तो देख रहे हैं दूसरों को नहीं देख रहे हैं, या दूसरों को देख रहे हैं, खुद को नहीं देख रहे हैं। हम भी उसी नजर से देखें जिस नजर से बाबा देख रहे हैं, तो हम भी बाप समान बन जाएंगे ना कि नहीं बन जाएंगे। आज तो बाबा ने कहा मैं तीसरा नेत्र देता हूं, नजर देता हूं, सच्ची नजर, नजर से निहाल करता हूं। तो नजर से निहाल कैसे करते हैं? आत्मा को पहले देखते हैं और हम आत्मा कितनी ऊंची है उस नजर से हमें देखते हैं। हम भी बाबा को उस नजर से, इतनी ऊंची नजर से देखते हैं। ज्ञान की नजर है ये, कोई स्थूल आंखें की बात नहीं है। तब निहाल हो जाते हैं, उनको उस नजर से याद करते हैं। बाबा भी जब हम बच्चों को दृष्टि देते हैं तो दृष्टि देते समय भी बाबा देखते हैं क्या ये बच्चा पुरुषार्थी है, ये नहीं पुरुषार्थी, नहीं ये कम पुरुषार्थी है, नहीं बाबा समान सबको एक जैसी दृष्टि देते हैं। मिसाल देते हैं ना हम लोग, सूरज का मिसाल देते हैं कि सूरज जब अपनी किरणें फेंकता है तो ये सोचता है कि इसको देना इसको नहीं देना, इसको देना उसको नहीं देना है। क्या करता है सूरज? सबको। या पेड़ पर फल लगे होते हैं तो वो पेड़ सोचता है क्या ये फल इसको देना इसको नहीं देना है? वो तो दाता है। या नदी कभी सोचती है या सागर कभी सोचता है इसको जल देना इसको जल नहीं देना है? सबको। तो जैसे प्रकृति भी दाता है, इसलिए देखो भारत के अंदर प्रकृति को देवता माना गया है क्योंकि दाता है। गीते ना, नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपनों का जो दूजों को दे वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। प्रकृति भी दाता है, भगवान तो दाता है ही है, प्रकृति भी दाता है, तो भगवान के बच्चे भी दाता। चलो और कुछ भी न दे सको, बहुत गरीब है, लेकिन दो शब्द स्नेह के बोल तो सकते हैं, उसमें तो कोई खर्चा नहीं है। खर्चा क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना कंजूस हो जो वो भी न दे सके तो फिर तो वो तो इस संसार में रहने लायक ही नहीं है। तो इसीलिए ईश्वरीय परिवार से सच्चा स्नेह माना, पहले तो हरेक की विशेषता जरूर देखो। हम कई बार सेंटरों पर ये खेल करते हैं, पता नहीं भानु बहन ने किया ये खेल कभी, कि हरेक को कहो कि किसी न किसी का नाम लिख करके उसकी विशेषता लिखो। किया ऐसा खेल? किया है? उसकी विशेषता लिखो जिसका भी आप चाहते हो, और फिर वो नाम सिलेक्ट करके उस व्यक्ति को वो दो, भाई ये तो आपके बारे में क्या क्या आपकी विशेषताएं हैं ये इन्होंने लिखी है। क्योंकि ज्यादा है ना, थोड़े होते हैं तो समझो पांच जने हैं, तो पांच जनों को ही कहा जाता है कि आप हर एक की अलग अलग विशेषता लिखो, तो फिर हर एक की अलग अलग विशेषता, तो पांचों ही पांचों की विशेषता लिखेंगे तो एक एक को पांच गुण मिल जाएंगे। पर हर एक को कहो कि अच्छा किसी की भी कोई ऐसी विशेषता आप लिख करके डालो और उस व्यक्ति को वो चिटकी दो कि आपके बारे में आपकी विशेषता क्या है। तो कई लोग जब पढ़ते ना तो कहते अच्छा मेरे अंदर ये विशेषता है, मुझे पता ही नहीं कि मेरे अंदर ये विशेषता है, तो पर दूसरे मुझे उस विशेषता के गुण से देखते हैं तो अवश्य हमको वो अच्छा तो लगता है कि हमारी विशेषता है। हमने तो, मैं पता नहीं कहाँ गई थी, किसी देश में गई थी, तो पति पत्नी का झगड़ा था आपस में, दोनों ज्ञान में चलते थे, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई, झगड़ा हो गया, तो आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। अब टीचर ने बहुत कोशिश की कि बातचीत नहीं कर रहे हैं पति पत्नी, तो बच्चों को कहेंगे जाओ मम्मी को ये कहो, हाँ जाओ डैडी को ये कहो, आपस में नहीं करेंगे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो मुझे टीचर ने कहा कि देखो दोनों क्लास में आते हैं लेकिन एक दो का मुंह भी नहीं देखते हैं, आते हैं क्लास में। मैंने कहा ऐसा कैसा, इतना परिवार रच डाला और आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसकी युगल को बुलाया, वाइफ को पहले बुलाया, पत्नी को। तो मैंने कहा कि अच्छा उसमें क्या क्या बुराई है, क्या क्या बुराई है, क्यों नहीं उनसे बात करती हो? तो कई बातें बता दी, ऐसा 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 है, वो क्या वर्णन करूं। मैंने कहा ठीक है अच्छा ये तो बताओ कोई अच्छा गुण भी होगा कि नहीं है उसमें, है ही नहीं कोई अच्छा गुण, इतने साल आप साथ में ही रहे हैं अभी भी साथ में हो, कोई अच्छा गुण है ही नहीं। तो सोचने पड़ गई कि अच्छा गुण है या नहीं। तो कहते मेरे को तो नहीं दिखाई देता कोई अच्छा गुण। तो मैंने कहा कि अच्छा पहले ये बताओ सिगरेट विगरेट पीता है क्या? कहती नहीं 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 वो तो कभी नहीं पीता। शराब वराब पीता है क्या? नहीं वो भी नहीं करता है। कोई गालियां देता है क्या? नहीं 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 भगवान की दया से अभी नहीं नहीं थे वो सब नहीं है। तो मैंने कहा वो सब नहीं है तो कितना अच्छा व्यक्ति होगा, क्यों आप उसको बुरा कहती हो? तो फिर कहा नहीं 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 वो गुस्सा करता है, भूल जाता है, ये करता है, मतलब बहुत कुछ बातें सुनाई। तो मैंने कहा देखो दुनिया में तो कैसे कैसे लोग होते, कितनी कितनी बुराइयां होती है, कितने कितने व्यसन होते हैं, इनमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, आप उनको उस नजर से देखो। तो चुप हो गई, कुछ नहीं कहा। फिर उसका पति को बुलाया अलग अलग, फिर पति से पूछा भाई क्या बुराई है उसमें? तो बहुत बातें बताई। तो आखिर मैंने उससे भी पूछा उसमें कोई अच्छी बात है ये सब बुराई बुराई अच्छी बात है? तो कहा कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा पहले बताओ आप कितना कितना जब शादी हुई कितना कितना कमाते थे? तो कहा बहुत कम, कमाई इतनी नहीं थी। अच्छा कमाई इतनी नहीं थी फिर भी उसने घर चलाया, इतनी थोड़ी कमाई में भी इतना घर चलाया, फिर बच्चे हुए मतलब रचना रची परिवार बनाया, तो इतनी थोड़ी कमाई में भी इतना अच्छा घर चलाया, कभी आपको महसूस होने दिया कि भाई कोई कमी है? तो कहा नहीं वो तो बहुत ही बड़ी समझदार है। फिर मेहमा करने लगा नहीं ऐसे तो बहुत समझदार है, खर्चे खर्चा बहुत ध्यान से करती है और कोई ऐसे फालतू खर्चा नहीं करती है, ये नहीं करती है। तो मैंने कहा इसने कितनी अच्छाई है, अगर कोई ऐसी औरत होती आपकी और सारा दिन खर्चा ही करती होगी और कमाई है नहीं और खर्चा करती होती तो कैसा हो, कैसा लगता आपको? तो कहा नहीं नहीं उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा वो रूप देखो उसका। अच्छा तो बेचारा शांत हो गया। फिर मैंने दोनों को बुलाया, हाँ दोनों को बुलाया। तो अब ये नहीं कहा कि आपने जो उनकी बुराई की है वो कहोगे, नहीं एक दोनों में दोनों को कहा, एक को कहा कि आपने जिसकी अच्छी बात सुनाई ना वो पहले बताओ, अच्छी बात क्या सुनाई आपने? तो पहले पति ने पत्नी की अच्छी बात सुनाई। तो जब पत्नी अपनी अच्छी बात सुनने लगी तो आंखें फड़ गई, नहीं तो पहले तो एक दो को देखते भी देख भी नहीं रहते पर जब वो अच्छी बात उसकी सुनाने लगा तो उनकी आंखें खुल गई, बिल्कुल उनको अच्छी तरह से देखने लगी और मुस्कुराने लग गए। फिर मैंने पत्नी को कहा तुम इनकी वो जो अच्छी बात आपने सुनाई थी ना वो सुनाओ। तो जैसे वो सुनाने लगी तो खुश होने लगा, तो दोनों खुश होने लगे, दोनों आपस में एक दो से मुस्कुराने लगे। मैंने कहा भी हाथ मिलाओ, हो गई पूरी ओके झगड़ा खत्म। नहीं तो देखो जब बच्चों को परेशानी, जब मम्मी को ये कहो जब डैडी को ये कहो ये बच्चे भी हंस रहे हैं हाँ भाई चलो एक ज्ञान में चलता है दूसरा नहीं चलता है तो ये विघ्न है जरूर, क्योंकि बाबा कहते हैं कि दोनों पहिए एक जैसे होने चाहिए तो वो घर स्वर्ग बन जाता है, और बच्चे भी साथ में हैं तो वो तो घर तो पूरा ही स्वर्ग है। तो बच्चे भी माँ बाप को शिक्षा देते हैं। कई बार मम्मी गुस्सा करती है तो बच्चा कहेगा, मम्मी तुम गुस्सा कर रही हो, मैं टीचर को बताऊंगा। तो बेचारी माँ भी समझ जाती है, तो मेरा बच्चा ही मेरी शिकायत करेगा टीचर को। तो मम्मी कहेगी कि मैं टीचर को कहूंगी, मैं दीदी को कहूंगी। पर हमने तो उल्टा देखा है। और ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, बच्चे बहुत होशियार, वो पूरा बाबा की मुरली नोट करते और मम्मी को शिक्षा देते हैं, डैडी को शिक्षा देते हैं। खैर अलग अलग है, लेकिन ईश्वरीय परिवार से स्नेह ये बहुत जरूरी है। और वो अगर लौकिक ही पूरा ईश्वरीय परिवार बन जाए, ईश्वरीय परिवार का ही वो रूप हो जाए, फिर तो सोने में सुहागा है। बाकी अगर मान लो एक है दूसरा नहीं है, तो भी बाबा कहते हैं ये तो हिसाब किताब है, परंतु आप उनके प्रति भावना अपने शुभ रखना छोड़े नहीं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी आत्मा हो, क्योंकि आखिर वो भगवान का तो बच्चा है ना, कि नहीं है। हम तो कई बार जेलों में जाते हैं, जेलों में वहां लिखा रहता है, जब कैदियों को राखी बांधने जाते हैं तो वहां लिखा रहता है, पाप से नफरत करो पापी से नहीं। ये क्राइस्ट ने कहा था, हेट नॉट द सिनर बट हेट हिज सिंस। पाप से भले नफरत करो, किसी ने बहुत पाप किया तभी तो वो अपराध किया, तभी तो जेल में है, पर उस अपराधी से मत करो नफरत। क्योंकि क्यों नहीं करो वो नहीं लिखा है, पर हम जानते हैं क्यों, क्योंकि असल रूप में वो बुरा नहीं है, भले उस समय उसने कितना भी बुरा काम किया हो, पर वास्तव में तो वो एक शुद्ध आत्मा है। इसीलिए देखो भक्ति मार्ग में उसका उल्टा अर्थ ले लिया है कि आत्मा पर तो कोई लेप छेप लगता ही नहीं है, इसीलिए फिर उसका उल्टा अर्थ क्या लिया, खाओ पियो मौज करो, सब ये सब शरीर को लगा, फिर गंगा स्नान किया सब धुल गया, आत्मा तो निर्लेप है, उल्टा हो जाता। पर बाबा कहते कि नहीं, आत्मा को ही लगता है, पर असल रूप में कोई भी आत्मा बुरी नहीं। और जो भगवान के बच्चे बनते, जिन्होंने भगवान को पहचाना, चाहे उनमें और कोई भी गुण ना हो, तो भी भगवान को पहचाना ये कितना बड़ा गुण है। बाबा ने एक बार माताओं को कहा था, अब एक बाबा की वाणी चली थी, बाबा ने कहा दुनिया ने तो माताओं का तिरस्कार किया, दाएं वो बाएं पैर की जुत्ती की भी जो एड़ी है ना वो स्त्री है, ऐसे तक कह दिया, नरक का द्वार है ये वो तो सब है किया ही, लेकिन इतना नीचे गिरा दिया। इसीलिए स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं, ये नहीं, अभी तो बदल गया लेकिन बहुत बुरा। और बाबा कहते हैं मैंने माताओं को उठाया जो बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल कभी स्कूल में नहीं गई, वो भगवान की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, है कि नहीं, वो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य जिन्होंने इतना कुछ अध्ययन किया है, वो अभी तक भगवान को नहीं जानते हैं, और ये अनपढ़ माताओं ने भगवान को पहचान लिया तो कौन ऊंचे हो गए। है कि नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कितना बड़ा गुण देखा, जो दुनिया नहीं समझ सकी वो भगवान ने उस इतनी ऊंची नजर से देखा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हम भी उसी नजर से सबको देखें, चाहे वो खुद अपने लिए कैसी भी नजर से देखे, पर हम उनको ऊंची नजर से देखें, और उस ऊंची नजर से भले वो मुझे बुरी नजर से भी देखे पर हम ऊंची नजर से देखें, तो धीरे धीरे वो भी ऊंची नजर से देखना शुरू कर देगा। कई बार हम कहते ना पर वो तो बदलता नहीं है ना, अच्छा वो नहीं बदलता पर आपके अंदर जो विचार है उनके प्रति वो भी कहां बदलते हैं, आप भी तो बदलो ना, वो तो बदलेगा नहीं, वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, तो आप उसके लिए सोचते हो पर आप भी तो कहां बदले, उसके प्रति विचार कहां बदले आपने, आप विचार बदलो तो वो भी बदलेगा। उनको दोष देने की बजाय खुद में भी खुद के विचार बदलो तो खुद तो बदल नहीं सकते, सोचते दूसरे बदले तो कैसे होगा, तो कैसे मिलेगा ईश्वरीय स्नेह जब हम अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी स्मृति बदल सके। और जो निमित्त बहन है उनके प्रति तो बहुत विश्वास चाहिए, बहुत स्नेह चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको अपनी अपनी वो भगवान ने उनको सीट दी है, बाबा ने दी है, हमने आपने थोड़ी दी है, तो बाबा ने दी है, दादियों ने दी है, बड़ों ने दी है, तो हम कौन होते हैं जो उसका कदर न करें। ये पाठ बाबा ने उसको दिया है, मेरा जो पाठ है वो मैं बजाऊं, दूसरे के पाठ में इंटरफियर नहीं करूं। बाबा कई बार कहते लॉ को अपने हाथ में नहीं उठाओ, लॉ को अपने हाथ में उठाने का कोई हकदार नहीं है। समझो मेरा पड़ोसी मेरे से लड़ता है, तो मैं जाकर के उससे लड़ूं तो क्या उसको गालियां दो, ये करूं वो करूं, बहुत नुकसान उसका करके आऊं, वो तो केवल लड़ा और मैं इतना उसका नुकसान करके आ गई, तो ये तो मैंने कानून को अपने हाथ में लिया, पुलिस में रिपोर्ट करो, FIR दर्ज करो, कानून को हाथ में मत लो। दुनिया में भी ये कहते हैं, उसने तो खाली दो गाली दी, आपने उसको थप्पड़ मार दी, एक्शन लिया, उसने तो खाली वचन बोला तो ज्यादा ही किया, तो पलड़ा भारी तो आपका होगा जो आपने थप्पड़ मार, उसने तो खाली गाली दी, तो दोष तो आपका लगेगा, उसने भले पर उसने गाली दी, अच्छा भले गाली दी, आपने थप्पड़ क्यों मारी, तो ज्यादा दोष किसका या गाली देने वाले का, पर उसने गाली दी, उसने भले दी पर तुमने थप्पड़ क्यों मारी, अगर तुम नहीं मारते तो पलड़ा उनका भारी होता, दोष उनका होता, तो हम तो उनसे और ज्यादा कर लिया तो उनको कैसे दोष दे सकते है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो बहुत कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन अभी हमको ये सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, नया कोई भी हिसाब किताब बनाना नहीं है। और संगम पर अगर थोड़ा भी कुछ गलत किया तो 100 गुना सजा बन जाएगी, अज्ञान काल में जो कुछ किया वो तो 1 गुना बना, पर ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा का बनने के बाद, कर्मों का ज्ञान मिलने के बाद अगर कुछ किया गलत श्रीमत के विरुद्ध तो 100 गुना, 1000 गुना, 1,00,000 गुना, 1,000,000 गुना भी बन सकता है उसका दंड, क्योंकि हम ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं। हम बाबा कहते हैं तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन होते ना तो उनका घाटा भी बहुत तो फायदा भी बहुत, और छोटे छोटे व्यापारी होते ना तो फायदा भी थोड़ा और घाटा भी थोड़ा, आज 100 रुपए का फायदा हुआ, आज 200 का हुआ, तो जो बड़े व्यापारी आज 1 करोड़ का फायदा हुआ, आज 2 करोड़ का नुकसान हो गया, तो उनके लिए 2 करोड़ कहते कोई बात नहीं, 2 करोड़ नुकसान हुआ, 10 करोड़ और मिल जाएगा, तो 2 करोड़ भी कुछ नहीं है, किसी का 200 का नुकसान होना बहुत बड़ी बात, क्योंकि व्यापारी उतना है, तो हम भी कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं है। बाबा कई बार कहते तुम भगवान के साथ व्यापार कर रहे हो, देते क्या हो लेते कितना हो, परंतु थोड़ा भी अगर ये कह दिया मैंने किया मैंने दिया, तो जितना जितना मिलना है उसका वो पूरा जो दिया वो भी खत्म, ऐसा हो जाएगा। और अगर बाबा की श्रीमत के विरुद्ध किया, जितना कमाया वो तो खत्म होगा और ही घाटा पड़ जाएगा, की कमाई चट जिसको बाबा कहते हैं, सब कुछ जमा किया सब खत्म, बुद्धि भ्रष्ट। इसीलिए बाबा कहते बहुत संभालना है, ये पेचीदा मार्ग है ना, जैसे पेचीदा मार्ग होता है ना, बहुत फिसलने वाला मार्ग, तो बहुत संभाल के चलना होता है, कहीं पांव फिसल ना जाए। इसीलिए बाबा ने वो कहावत है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, हाँ गिरे तो चकना चूर, ये है लंबी खजूर। लंबी खजूर जो थे, खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है, जो चढ़ जाए तो उसको तो रस मिल जाए, पर गिरा तो और अभिमानी व्यक्ति की तुलना भी उस खजूर के पेड़ के साथ की जाती है। खजूर का पेड़ बहुत अभिमानी होता है, बड़ा घमंड से खड़ा है, तो कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया न दे, फल लागे अति दूर। किसी में बहुत अच्छे गुण है लेकिन वो अभिमान वाला है, तो उसके गुण कोई काम के नहीं है, क्योंकि कोई उसके नजदीक नहीं जाएगा। अभिमान के कारण उसके नजदीक भी कोई नहीं जाएगा, प्यार उसके अंदर है ही नहीं, अभिमान ही है केवल, तो उसके नजदीक जाएगा कौन? और कोई जाएगा नहीं, तो उसका जो गुण है वो भी लेगा कौन? कोई नहीं लेगा, इसलिए वो खजूर की पेड़ पर चढ़ेगा ही नहीं, कौन चढ़ेगा? और किसी को सुख भी नहीं दे सकता, केवल शोई पिक्चर है। पर कोई हिम्मत रख के चढ़ भी जाए पर गिर जाए तो इसीलिए चढ़ते भी नहीं है। तो अभिमानी व्यक्ति उसकी तरह है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभिमान कभी भी ना आए, भूल से भी ना आए। आज भी स्लोगन था ना, अगर किसी में कोई विशेषता है भी तो वो भी किसने दी है? हाँ। और अगर अभिमान रखता ये मेरी विशेषताएं हैं, तो ये बाबा की दी हुई अमानत में ख्यानत है। अमानत में ख्यानत बोलते हैं, समझो मुझे कोई 10,000 रुपया दे और कहे कि आप ये संभाल के रखना, मैं 6 मास के बाद आपसे लूंगी। हा? और 6 मास के बाद जब वो मेरे से लेने आए, मैं को नहीं, 6 मास तो मैंने रखा भी नहीं, दूंगी, मेरा हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? अमानत में ख्यानत, मेरा तो है नहीं, चलो रखा, परंतु मेरा तो नहीं है ना, उनका ही है। तो ये जो वरदान, जो हमें जो कुछ भी विशेषताएं बाबा ने दी है, वो उन अमानत है, इसलिए मैं कभी भी अभिमान नहीं करूं ये मेरा है। हम तो कई बार कहते हैं बाबा के पास आने से पहले क्या विशेषता थी? कुछ भी नहीं थी, भाषण करना थोड़ी आता होगा। आप भी, कई माताएं अपना अपना अनुभव सुनाती है, भाई भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि जैसे बाबा की बने तो बाबा ने कितनी कलाएं सिखा दी, कितनी विशेषताएं सिखा दी। पहले तो कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, तो कैसे आ गई? बाबा ने दी। एक और कई बार हम मिसाल देते हैं, मान लीजिए कई लोग हैं ना, अंदर में थोड़ा हीनता की भावना आती है कि देखो इसकी इतनी महिमा होती है, इनका इतना गुण का गायन होता है, इनके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, मेरे अंदर है ही नहीं। वास्तव में ये सोचना भी गलत है। आप अपने अंदर उस रूप से विशेषता लाओ, इसमें क्या है? जो उसमें विशेषता नहीं है, आप अपने अंदर देखो कि क्या विशेषता आप अंदर भर सकते हो, वो भर लो, वो आ सकती है। एक छोटा सा मिसाल दूं मैं आपको कि कई जगह जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो एक बहन थी, तो कहे बहन जी, शिलू बहन, मैं आप जैसा कैसे बनूं? अब मैंने कहा कोई भी किसी के जैसा बन ही नहीं सकता है, पहली बात तो ये, कोई किसके जैसा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो कहते आप इतना भाषण करती हो, आपको निमंत्रण मिलता है, हमको कौन निमंत्रण देगा, हमको कौन निमंत्रण देगा? तो मैंने कहा कि आप में कोई तो विशेषता होगी, उस विशेषता का निखार करो तो आपको निमंत्रण मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? हमने भी ये विशेषता बाबा ने दी, इसका निखार किया तो चलो निमंत्रण मिले। आपके अंदर भी कोई विशेषता होगी जरूर, ढूंढो अपने अंदर क्या विशेषता है। तो मैंने पूछा आप खाना अच्छा बना लेती हो? कहती हाँ वो तो बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो मैंने कहा इसमें और होशियार हो जाओ, अगर आप खाना अच्छा बना लेती इसमें होशियार हो जाओगी तो आपको इसमें निमंत्रण मिलेंगे कि आप मेरे पास आकर के खाना बनाओ। विदेश की बहन है वो, भारत की नहीं थी, विदेश की बहन थी। तो कहा अच्छा ऐसे होगा क्या, निमंत्रण मिलेंगे मुझे? मैंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे। तो सचमुच उसने ये अपने अंदर ऐसी विशेषता भर ली कि जहां जहां हमारे रिट्रीट्स होते थे विदेशों में, दादी जानकी सबसे पहले उसको बुलाएगी, तो जब जगह वो जाने लगी, यानी उसने कहा मैं आप जैसे कैसे बनूं, मैंने कहा हमारे जैसे बनने का लक्ष्य मत रखो, आपके अंदर जो विशेषता, उस विशेषता को आगे बढ़ाओ। और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है ही है, क्योंकि अगर मैं इन जैसा बनूं तो वो तो बन नहीं सकेंगे, फिर ईर्ष्या होगी, फिर ईर्ष्या होगी या तो अपने से नफरत होगी, तो स्नेह कहां गया, स्नेह तो खत्म हो गया। परंतु जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे मैं भी आगे बढ़ूं अपनी विशेषता में, तो उनसे भी स्नेह बना रहेगा और अपने से भी स्नेह बना रहेगा। हर एक आगे बढ़े, ये नहीं किसी को गिरा के मैं आगे बढ़ूं, ये कभी नहीं होगा। अगर किसी को गिराएंगे तो खुद भी गिर जाएंगे, ये भी कर्म की गति है। हम दूसरों की मान लो गिलानी करते हैं तो हम क्या समझते हैं, क्यों ग्लानी करते हैं किसी की, कि उनकी नजर में वो गिर जाए, तभी ग्लानी करते हैं ना। अरे आपको पता नहीं कैसी है, पर मना उनकी नजर में वो गिर जाए, परंतु आप क्या समझते हो कि सचमुच वो गिरेगी क्या? गिरेगा नहीं, हम ही गिर जाएंगे कि देखो इनके अंदर में जरा भी किसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं होता, कितनी अच्छी है, क्यों ऐसे कह रही है, तो मेरे प्रति ही उनकी दृष्टि बदल जाएगी। मैंने सोचा दूसरे को गिराऊं और गिर जाएंगे हम। इसलिए कहावत है ना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही गिर जाता है। तो इसीलिए किसी दूसरे को गिराने का कभी लक्ष्य न हो, वो अपने ढंग से आगे बढ़े। आशीर्वाद दो, सबको आशीर्वाद दो, सबको दुआएं दो। तीन चीजें होती है, दुआ, आशीर्वाद और वरदान। दुआ तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, छोटे भी कर सकते हैं बड़ों के प्रति, बड़े तो छोटों के प्रति करते ही हैं, पर छोटे भी बड़ों के प्रति कर सकते हैं, कम वाले भी ऊंचे वालों के प्रति दुआ कर सकते हैं। कई जैसे दादी जी भी कई बार हमको कहती थी कि देखो मैं तो दुआओं से ही पल रही हूँ, दुआओं से ही चल रही हूँ, क्योंकि सबको सुख दिया, सबको सुख दिया, तो जो जब सुख किसी को मिलता है तो उसकी दुआ निकलती है, भले उसके अंदर में कुछ प्राप्ति न भी हो पर सुख मिला उसको तो उसकी दुआ निकलेगी। तो हमेशा बाबा कहते सबकी दुआएं लो, दुआएं लो, किसकी भी बद्दुआ कभी मत लो, चाहे वो भले कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर फिर आप उसकी दुआएं लो। तो एक है दुआ, और दुआ कैसे निकलेगी, सुखी रहो। एक भिखारी होगा ना वो भी कहेगा सुखी रहो, सुखी रहो, मतलब ये दुआ निकली ना। कोई भूखा है उसको दो रोटी दी तो थोड़ा पेट भरा, कहेगा सुखी रहो, हाँ तो ये दुआ निकली। तो दुआ, फिर आशीर्वाद, आशीर्वाद ये भक्ति मार्ग का शब्द है, आशीर्वाद करते हैं। बाबा कहते अपने ऊपर खुद ही आशीर्वाद करो। कैसे आशीर्वाद करो, आशीर्वाद मांगो मत, दुआएं भी मांगनी नहीं होती है, दुआएं आप भला करो, दुआ अपने आप मिलेगी। आशीर्वाद अपने ऊपर करो। कैसे आशीर्वाद करेंगे अपने ऊपर, जो बाबा की श्रीमत है उसका, उसको पालन किया माना, अपने ऊपर आशीर्वाद दी। और वरदान कौन दे सकता है, जो खुद भरपूर होगा, जिसके अंदर अपने प्रति कोई स्वार्थ नहीं है, जो दाता की तरह है, बाबा की तरह है, जैसे हमारी दादियां बड़े, वो वरदानी आत्माएं हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बाबा ने उनको सब कुछ दे दिया, भरपूर है, बस वो वरदानों से झोली भर रही है सबकी, उनका एक एक वचन वरदान बन जाता है। बाबा के मुख से एक एक शब्द जो निकलता है वो वरदान है ना। तो जो स्वयं भरपूर होता है, शक्तिशाली होता है, उसके मुख से जो भी शब्द निकलेंगे वो वरदान ही सिद्ध होंगे, क्योंकि वो मास्टर दाता बन जाता है। तो वरदानी आत्मा मैं बनूं और वरदाता की तरह मैं भी वरदान दे सकूं, क्योंकि खुद भरपूर हूं, इसलिए मास्टर दाता बन के दूं, कहीं भी आंख न डूबे, इसके लिए आंख कहीं नहीं डूबे, अंदर में संतुष्ट हो, भरपूर हो, और सब ऐसे बने तो सबके प्रति दुआएं भी निकलेगी और अपने प्रति आशीर्वाद होगी और बाबा से वरदान लेते रहेंगे। तो दुआएं औरों को देते जाओ, आशीर्वाद अपने को देते जाओ और वरदान बाबा से लेते जाओ, तो देखो क्या होगा, आप भी सुखी, जग सुखी बनेगा। और आप सबको प्यार देते जाएंगे तो खुद प्यार से भरपूर होते जाएंगे। तो ईश्वरीय परिवार के साथ स्नेह, बड़ों से स्नेह, जो निमित्त आत्मा है उनके प्रति भी वही स्नेह, और मास्टर दाता बन करके देना है, बस यही भावना रहे, ठीक है। तो हम सब इतने भरपूर हो जाएं जो बस दाता बन करके देते जाओ, मास्टर भगवान यही बन जाओ, और भरपूर हो करके, बाबा कहते हैं हाथ भरपूर होके जाएं वापस, सजा न खानी पड़े, कोई भी हिसाब किताब बाकी रहा हुआ न हो, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, या बाबा कहते हैं। तो जाएं तो बस सीधा घर जाएं और फिर नई दुनिया में आएं, यही सबका लक्ष्य है ना, हा? कि यहाँ संसार बनाना है, बहुत कुछ भले करो, बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन मन उपराम हो, मन न्यारा प्यारा हो, मास्टर दाता हो, बाप समान हो, दृष्टि वृत्ति बहुत ऊंची हो, विशाल दिल हो, तो देखो ये जन्म तो सफल कर ही लेंगे और 21 कुल बाबा कहते हैं तुम्हारे तर जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी 3 मिनट फिर से बाबा को याद करो।
बेन जी का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा अनुभव युक्त सभी को क्लास कराया।